ओम शांति। शरीर का नाम रमीला बेन, सेवा न्यूजीलैंड वेलिंगटन में है। तो आज हमको अपना अनुभव सुनाने को बोला है। तो 42 इयर्स बाबा के ज्ञान में चलते हुए हुआ है और बाबा का ज्ञान हमें न्यूजीलैंड में डॉक्टर निर्मला दीदी जो अभी ज्ञान सरोवर में है, तो वो आई थी पहली बार में। तो पहले वो ऑकलैंड में आई थी, वहां से वेलिंगटन में आई। तो एसोसिएशन होता है वहां, जहां जहां इंडियन रहते हैं ना, तो अपना मिलने जुलने का, भक्ति का, इसलिए वो मंदिर नहीं लेकिन एक हॉल जैसे एसोसिएशन, भारत भवन जिसको कहते हैं। तो भारतवर्ष से जो भी आए वो आकर के प्रवचन करते हैं, कथा रखते हैं, पूजा आदि करते हैं। तो हम उसमें जाते थे, गीता क्लास हफ्ते में एक बार होता था और हर जितने भी आते हैं उसमें से अगले के लिए चुन लेते थे। तो ऐसे हम भक्ति करते थे। तो डॉक्टर निर्मला दीदी आई तो सबको परिचय मिला। वहां पत्रिका निकलती है कि इंडिया से सन्यासी बहन आई है, वो गीता ज्ञान का प्रवचन करती है। और गीता में तो हम जाते ही थे। तो ऐसा सुन करके जहां वो रखा था वहां हम गए। तो उनका संडे था तो गीता, पहले गीता पढ़ी भक्ति वालों ने, वो पूरा हुआ। उसके बाद दीदी ने सार रूप में गीता का बताया। तो बात बात में, प्रवचन में दीदी ने ही बताया कॉन्ट्रास्ट गीता का, नहीं? जज हमको करना है, दीदी पॉइंट देती गई। पहली बार आई उस देश में और सीधा तो ऐसा नहीं कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, नहीं? लेकिन कॉन्ट्रास्ट बताया कि हम भगवान किसको कह सकते हैं, हमको जज करने को, ऐसा ही समझाती थी कि जो दीदी पॉइंट्स बताए उसको हमको जज करना है, ये राइट है या ये रॉन्ग है। तो दीदी ने बताया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण देवता है और परमात्मा शिव है। तो ये पॉइंट उसी दिन से मेरे को जच गई, क्योंकि मैं चाहती तो थी, ढूंढती तो थी कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता। लेकिन वहां जो भी सन्यासी आते थे उनको हम अपने घर भी बुलाते थे, खाना पीना भी खिलाते थे, पूजा पाठ कथा भी कराते थे। लेकिन जब ए भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में जब उनको पूछते हैं कि कृष्ण का ऐसा चरित्र क्यों है, एक तो ये भगवान कहलाता है और दूसरा उसका नटपन नटखट है, नहीं? जो जचता नहीं है भगवान होकर के किसी का वस्त्र चुरा ले जाए, नहीं? मक्खन चोर चोरी करके खाए, और ये सब बातें अच्छी भी लगती है तो पसंद भी नहीं आता है चरित्र के रूप में। तो दीदी ने बताया कि गीता का भगवान कृष्ण तो जैसे मेरा तो सूरज ही पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम हो गया, इसी तरह हो गया कि बस मेरे तो यही सुनना है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। और यही पॉइंट मेरे को लग गई कि भगवान इसको ही कह सकते हैं शिव को। और वैसे मैं शिव की ही भगत थी, इंडिया से बिली पत्र मंगवा करके भी सावन में शिव की पूजा करती थी। तो इसलिए मेरे तो जो चाहे वो मन भावन पॉइंट मिल गई। तो फिर एक हफ्ता यहाँ रही, एक हफ्ता वहां रही, ऐसे दीदी अलग अलग जगह दो तीन चार हफ्ता वहां रुकी। तो उनका जहां भी क्लास था हम गए और दो बारी अटेंड किया, इंग्लिश में भी और गुजराती में भी, क्योंकि वहां गुजराती है, सब हिंदी नहीं है तो गुजराती और इंग्लिश। तो मैं गुजराती में जाती थी और लोकिक हस्बैंड इंग्लिश में, उनको गुजराती में नहीं समझ आता। तो वो इंग्लिश का अटेंड करते थे, लेकिन जाते दोनों साथ में, तो मेरे को डबल चांस, पहला गुजराती वाला भी क्लास, फिर बाद में इंग्लिश वाला भी। तो हमने साथ साथ सुना, इसलिए ज्ञान में आने में दोनों साथ साथ ही आए। उसी दिन से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि दीदी जो बताती गई उनको हम फॉलो ही करते गए। नहीं तो दोनों ने एक दूसरे को नहीं पूछा कि हमको इसमें चलना है या खाना पीना छोड़ना है या कैसा जीवन बनाना है, नहीं, हम दोनों ही साथ साथ चले। इसलिए और बच्चे थे, एक बच्चा था एक साल का और दूसरा का जन्म नहीं हुआ था, तब से हम नॉलेज में आ गए। तो दीदी तो महीने के बाद चली गई, तो फिर क्या आगे का। और जब दीदी थी तब तो पूरा इसी तरह होल भर के आते थे लोग, लेकिन जब धारणा की बात आने लगी ना, खाना पीना छोड़ना है और पवित्र बनना है, तो ये सबको तो नहीं, जो बाबा का होवन हार है उनको ही वो पॉइंट टच करे, तो सिर्फ चार पांच बचे पक्का चलने वाले। 100-200 के क्लास से पांच फैमिली, माना पांच युगल, तो ऐसे बचे। तो अब क्या करेंगे, दीदी तो कुछ बता करके भी नहीं गई, कह के भी नहीं गई, लेकिन अब करना क्या है, आगे सुनना तो है। तो उसी समय इंडिया से एक युगल आया था ज्ञान में चलने वाला, वो भी गुजराती, तो दीदी भी थी उस समय। तो दीदी उनको बता के गई कि जितना दिन चले और आप जितना दिन यहाँ हो इतना दिन चलाओ। तो ऐसे दीदी को थोड़ी पक्का था कि यहाँ चलेगा, नहीं, पहली बार जाओ जिस कंट्री में और किसी को पता ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी के बारे में, जानते ही नहीं है। तो दीदी तो गई, फिर वो आए, तो हमारा इंटरेस्ट बहुत था ना उस पहले दिन से ही, पहले जाना सब कुछ तैयार रहना, कोई आए उनका ये संभालना। तो वो लोग जब इंडिया चले गए थोड़े समय के बाद, तो मेरे को मुरली देके गए, हम जानते भी नहीं मुरली क्या है क्या है। तो वो कहा कि आप इनको पढ़ते रहना, मुरली को 70 कोर्स आदि नहीं। तो दीदी ने जहाँ जहाँ क्लास रखा वहाँ वहाँ हम गए, उसमें ही 70 कोर्स आ गया। तो वो मुरली हमको देकर गए चार पांच के, आप इनको पढ़ते रहना, तो मैं अकेली पढ़ के क्या करूँ, नहीं। तो हम जो भी चार पांच छह थे उनको बोला कि हम हफ्ता में एक दिन फिक्स करेंगे। तो मैं लौकिक सर्विस भी करती थी और बच्चे भी थे, तो क्या किया, बुधवार को फिक्स किया, क्योंकि सोमवार मंगलवार को ओवर टाइम होता है, बुधवार को फ्री होता है और गुरुवार को फिर ओवर टाइम होता है और शुक्रवार को फ्री होता है, तो शॉपिंग करने की होती है, तो सैटरडे भी सर्विस पर जाना है और संडे का घर काम करना है, तो इसलिए ज्यादा और कुछ टाइम ही नहीं है, तो वेनसडे का ही फ्री है। तो वेनसडे हम हफ्ते में एक बार मुरली पढ़ते थे, तो मुरली में क्या आधा में से आधा भी नहीं, क्योंकि हिंदी पढ़ना एक लाइन, उनकी गुजराती करके समझाना, फिर हिंदी पढ़ना, फिर उनका गुजराती करके समझाना, नहीं। और आगे से हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन जो हिंदी है उनका गुजराती कर देना। तो ऐसे हमने तो क्लास चालू किया, एक माताजी ने अपना कमरा दिया घर में एक्स्ट्रा है, तो वहां सब हम इकट्ठे होते थे बुधवार को, जिनको आना है वो आवे, और ऐसे मुरली क्लासेस चालू रखा। तो यहाँ पता चला दीदी के वहां न्यूजीलैंड में तो क्लास चल रहे हैं अब तक भी। तो एक साल ऐसे हुआ, फिर दूसरे साल तो वो जिसने कमरा दिया था उसने मना किया कि अब तो हमारे को इंडिया जाना है और घर बंद करके जाएंगे, आप अपनी प्रबंध दूसरी जगह करो। तो एक दूसरी माता थी, अंदर ही आती थी क्लास में ज्ञान में, तो उनके घर पे रखा एक साल। फिर दो साल हुए तो मेरे बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, वो भी दो साल का हो गया और पहले वाला तीन साल का हो गया, तो अब तो उनको मैं लेकर के इंडिया आ सकती हूँ ना। तो मैंने तो तैयारी की मधुबन आने की, सर्विस से भी छुट्टी ले ली 3 महीने की, और बच्चे को लेकर के पहला मैं आऊंगी। तो जब आने का समय हुआ, टिकट तो पहले 2-3 महीने से बुक कर देनी पड़ती है, छुट्टी भी लेनी पड़ती है, तो वो सब लेकर के तैयारी करके तैयार हो गए मधुबन आने के लिए कि जहाँ भगवान आता है उनको मुझे मिलना। मैं तो तुरंत ही जाती लेकिन इस बच्चों के कारण नहीं जा सकी, लेकिन अभी थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो मैं तो मधुबन जाऊंगी। तो बहुत उमंग उत्साह से मधुबन आने के लिए तैयार हो गई। तो जब तैयारी हो गई, एक महीना बाकी रहा, दिसंबर में आने का था, तो नवंबर में पता चला कि जानकी दादी ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो बताया कि दादी न्यूजीलैंड भी आए, और न्यूजीलैंड में तो हम पांच ही है। वैसे एक कोने का कमरा छोटा था, कोई किराए का मकान लेकर के तो नहीं कर सकते थे, और पांच थे, वो भी पांच बूढ़े थे बूढ़े लोग थे, इतनी ज्यादा कोई कमाई करने वाला नहीं था कि पैसा निकाले, नहीं हम ही यंग थे उस समय दोनों। तो फिर हम तो चलाते थे ऐसे, तो वो तो फिर सबने इकट्ठे करके बताया कि अब जवाब देना है रमेश भाई को कि आवे या नहीं आवे। वो उसने बोला कि आप प्रबंध दादी के लिए दो दिन के लिए भी करे तो दादी न्यूजीलैंड आना चाहती है। तो दो दिन के लिए क्या है, एक दिन का भी प्रबंध की बात नहीं है, पहले तो दादी को रखे कहाँ, नहीं कोई का घर ऐसा पवित्र नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, तो कहाँ दादी को रखे, और इतना ही बाबा की धारणा पालना वाला है, और होटल में रखे वो भी ठीक नहीं है। तो एक दूसरे का सब मुंह देखने लगे, फिर मेरे ऊपर भी आया क्योंकि मैं ही क्लास कराती थी, तो कहते आप मधुबन नहीं जाओ। तो मैंने कहा मैं मधुबन नहीं जाऊँ इसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो कहते जनवरी में दादी तो आ रही है, तो आप अभी जा रही हो ना तो नहीं जाओ, फिर इतने दो साल में हम कुछ करेंगे, आई मीन दो महीने में। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि दादी को हमने देखा नहीं, मधुबन की हिस्ट्री कुछ जानते नहीं, सिर्फ जानते हैं तो इतना कि भगवान भारत में आता है, इतना ही जानते हैं। तो मैंने कहा मेरे को तो भगवान को मिलने जाना है, दादी के लिए मैं नहीं रुकूंगी, दादी कौन है क्या है मुझे क्या मालूम, और उसके लिए मैं भगवान को मिलने को क्या छोड़ू, नहीं मेरा सब फाइनल हो गया है, टिकट बुक हो गई है, मैं कैंसिल नहीं कराऊं। तो कहती है तब तो हमको ना करना पड़ेगा, आप नहीं रहेगी तो फिर बाबा ने ही ऐसी टचिंग कराई होगी। तो मैंने बोला कि हमारा मकान दो तीन किराए पे थी, एक में हम रह रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि हम दोनों ने ही मिलकर कहा कि हमारा जो किराए वाला मकान है इसमें से जो आपको पसंद आए वो हम किराए वाले को दादी आने से पहले छह हफ्ता उनको वार्निंग देनी पड़ती है, नोटिस देनी पड़ती है कि मकान हमको चाहिए, तो अंदर जो रह रहे हैं वो छह हफ्ते में खाली कर देते हैं, तो फिर उसके बाद दादी के लिए वो रखना आप, फिर मैं वापस न्यूजीलैंड से इंडिया से आ जाऊंगी, उसके बाद देखा जाएगा, वापस फिर से हम किराए पर दे देंगे, लेकिन इतना समय हम कर सकते हैं, किराए वाले को रोक देते हैं, और जो भी आपको टाइम मिले सब मिल करके सफाई सुथरा करके दादी के लिए तैयारी करना आने के, और उसमें दादी को ठहराना। तो एक महीना के आप योग तपस्या करेंगे तो पवित्र बनेगा वाइब्रेशन, फिर ठीक रहेगा। तो सब खुश हो गए, चलो हम सफाई आदि तो करेंगे ना, मकान को योग भी करेंगे आकर के। तो वो बहुत खुश हो गए। तो फिर मैं तो ऐसा कर करके ऐसा प्रोग्राम बना करके किराए वाले को नोटिस दे दिया तुरंत ही कि इस समय तक आपको निकल जाना है, दूसरी जगह ढूंढ लो। तो वो तो निकल जाते हैं, तो निकल गए। फिर उनको बोला कि पेंट आदि कलरिंग आदि जो भी करना पड़ता है, कुछ धुलाई बुलाई करना पड़ता है आप लोग करना, हम खर्चा के लिए उठा लेंगे, लेकिन आपको सब मिलकर के करना पड़ेगा। तो वो तैयार हो गए। तो फिर जिस दिन दादी आने वाली थी उस दिन वोल मेडिटेशन था, तो हमको तो मालूम नहीं था ना, इंडिया में 5:30 बजता है तो उस समय वहाँ 1:30 बजता है, 1:30-2 बजता है, तो हम रात को वोल मेडिटेशन करते थे 2 बजे सेंटर पे जाकर के, क्योंकि इंडिया के टाइम से वोल मेडिटेशन करते थे। तो उस दिन दादी आने वाली थी अमृत बेला, तो 2 बजे से सब योग में विश्व योग के लिए आए थे। तो वापस कोई नहीं गए घर में, 5-10 जो भी थे, और दादी आने वाली है इसलिए घर में जो है उनको भी ले आए थे कि दादी आएगी तो मिलेंगे। इसलिए जैसे पूरा क्लास ज्ञान में चलता है इसी तरह भरा हुआ था। और दादी आई अमृतवेला 4 बजे, तो दादी ये देखकर खुश हो गई कि सारी रात आप जाग करके दादी की वेलकम के लिए आए हैं इतने बजे। तो बताया कि दादी वेलकम के लिए नहीं आए, वेलकम में तो सुबह में आएंगे, ये तो अब बोल मेडिटेशन के लिए आए हैं, और बोल मेडिटेशन 2 से 3 पूरा होगा फिर आप आने वाली है। तो कोई वापस घर ही नहीं गए कि दादी को मिल करके ही जाए। तो इसीलिए तो तब से दादी ने टाइम चेंज किया कि आपका लोकल टाइम होता है उस समय वोल मेडिटेशन करना, फॉरेन का टाइम उससे दादी ने चेंज किया। फिर सुबह ये तो मेरे को बता रहे, मैं गई ना तब, तो फिर वहां दादी ने सुबह में बोला कि सब नारियल लेके आना और सुबह में हलवा बनाना है टोली में ना। तो टोली भी मालूम नहीं है, टोली क्या है, क्या बनाने का है जो बताएंगे वो बनाएंगे नहीं? तो कहते कि हलवा बनाना है, तो जान गए कि प्रसाद बनाने वाला है नहीं? तो हलवा बनाया और नारियल से सबको बाहर निकाला, फिर नारियल क्रैक करके अंदर में आए और दादी ने जैसे कि सेंटर ओपनिंग किया और बाबा का चित्र लगाया बिठाया। फिर दादी तो 2 दिन में वापस मधुबन आ गई, और मैं तो मधुबन में पहले से ही थी, और बाप दादा हर तीसरे दिन आते थे, तो हम हर तीसरे दिन बाबा को मिलते थे, बात करते थे नहीं? तो जैसे बाबा मेडिटेशन हॉल में आया और दादी का टर्न मिलने का आया, तो दादी जानकी दादी बाबा को बताती है कि बाबा मैं न्यूजीलैंड में सेंटर खोल के आई। दादी इस तरफ बाबा को बता रही है, बात कर, दादी मेरे को नहीं जानती, मैं दादी को नहीं जानती नहीं, लेकिन जानकी दादी बाबा को बताती है कि बाबा मैं न्यूजीलैंड में सेंटर खोल के आई सर्विस से, और इस तरफ मैं बैठी थी। तो दादी बात करे और बाबा मेरे तरफ देखे कि टीचर तो यहाँ बैठी है सबसे पहले साल से ही बाबा ने मुझे टीचर का टाइटल दे दिया, टीचर तो यहाँ बैठी है। तो फिर हमारी मुलाकात हुई दादी के साथ, फिर उसके बाद मैं वापस गई और दादी ने सेंटर खोला था, फिर बंद थोड़े ही करेंगे नहीं? तो फिर वही सेंटर की तरह चलाया, और हम हमारा अपना अनुभव है कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सवाल ही नहीं है। और कोई हम क्लास के लिए किसी को बताते हैं और वो कहते हैं टाइम नहीं है, तो हम कहते हैं आप बानेबाजी हो, अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हो नहीं, आपको भाग्य का पता नहीं है इसीलिए आप कहते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं अपना अनुभव सुनाती थी कि देखो मैं 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे रोज का उठने का है बिना अलार्म के नहीं, फिर घर में योग करके, बच्चे तो सोए रहते हैं, और मैं घर में योग करके 5 बजे सेंटर का टाइम रखा था, क्योंकि 7 बजे से सबको सर्विस पर जाना है, तो 6 बजे वापस घर जाए तो तैयार होकर के सर्विस पर जाए ना, घर में नाश्ता आदि कुछ करना है बनाना है, तो हमने टाइम 5 बजे का क्लास का रखा, इसलिए कोई मना ही नहीं करेगा हमारे पास टाइम नहीं है सर्विस के आने के बाद घर में टाइम लग जाता है टाइम में, तो 5 बजे का है, 5-6-7 बजे तो लोग सोए रहते हैं। तो अगर अपने भगवान को याद करना है, भगवान से मिलना है, तो 5 बजे उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और कोई मार्जिन नहीं, इसलिए इतने बजे का ही क्लास रख दिया, 5 बजे का सुबह में 4:45 का। तो फिर 4:30 हम घर से निकल जाते थे, सब आने से पहले, हमारा ही तो मकान यहाँ से यहाँ सिर्फ 5 मिनट का, बाई कार में 3-4 मिनट का दूर था, एक कोने में ये रहने वाला घर और दूसरी कोने में स्ट्रीट के दूसरे आगे बाबा को दिया वो मकान था। तो रोज सुबह में 4:30 घर से जाकर के वो अगरबत्ती करके लाइट करके बाबा की याद में बैठते हैं, और सब जो आने वाले हैं वो आ जाते हैं, और 6 बजे क्लास पूरा कर देते हैं। मुरली तो हम आधी पढ़ते थे ना, पूरी थोड़ी पढ़ते थे, जानते नहीं थे, और इतना गुजराती भी करना है, डबल टाइम जाता है इसीलिए। तो ऐसे हमने क्लास शुरू किया और चालू रखा क्लास के रूप में बाबा का। तो ऐसे करते एक साल हो गया, फिर मधु बनाने का टाइम हो गया बाबा को मिलने को नहीं, तो फिर से मैं तो दिसंबर में आ गई बच्चों के लेकर के। तो पहली बार आई थी तो जैसे के क्या है जानने की जिज्ञासा, मधुबन कैसा है, बाबा कैसा है, कैसे भगवान से मिलते हैं सारी। लेकिन पहली बार होके गई तो सब जान के अनुभवी होके गई ना, तो दूसरी बार आना है लेकिन बाबा की सेवा भी तो करनी है नहीं। तब शुरू से ही ज्ञान भी लिया और दूसरे को समझाते भी रहे, बाबा के अंदर क्लास में लाते भी रहे और उनको बताया। तो छोड़ने का उनको छोड़ने का अनुभव नहीं, ये नहीं बताया कि आपको छोड़ना है नहीं? हम कहते हैं जैसे कि बीमारी है नहीं? जब डॉक्टर बता देते हैं आपको इस प्रकार की बीमारी है, आपको इस प्रकार की, तो ये खाने से आपकी बीमारी को फायदा नहीं करेंगे और ही जल्दी जाएंगे नहीं, लेकिन परहेज करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं? तो करते हैं ना परहेज, डायबिटी हुई है तो शुगर छोड़ते हैं ना। लेकिन ऐसे किसी को कहो मीठा नहीं खाओ तो नहीं मानेंगे नहीं, लेकिन डायबिटी हुई तो छोड़ देंगे। तो इसी तरह उनको बताया है हमने कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सब खाओ पियो, लेकिन खाने से पहले याद करो कि मुझे कौन कह रहा है, सात्विक आहार लेने को कौन बता रहा है, उनकी वैल्यू को समझो। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है नहीं, डायरेक्ट भगवान आकर के कह रहा है कि आपको देवता बनना है तो पहले सात्विक बनना है नहीं। तो चॉइस इज योर्स, आप ले या नहीं ले, सात्विक बनो या नहीं बनो। कलम भगवान ने आपको दी है कि आप लिखो कि मेरा जीवन सात्विक बनाना है या नास्तिक बनाना है नहीं? मुझे रावण की राह पे चलना है या राम की राह पे चलना है। तो उनको ये तफावत समझाते थे कि आपको क्या करना है, तो अपने आप ही वो छोड़ देते हैं कि हमको तो अच्छे राह पे चलना है, बुरे राह पर तो चल करके हमने दुनिया को देख लिया नहीं? अब जानकारी मिल रही है तो जानबूझकर हम खड्डे में क्यों गिरे नहीं? तो ऐसे करके हमने वहां बाबा के बहुत सारे बच्चे निकलने लगे प्रैक्टिकल जीवन से, वो देख करके अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते नहीं। तो फिर ऐसे क्लास की वृद्धि हो रही थी, तो दूसरे साल आई तो मैंने पक्का एम करके आया कि बस वहां तो मकान दे दिया है वो चलाते रहेंगे और दूसरे निकल आएंगे, लेकिन मेरे को तो भारत में ही रहना है और विनाश कब भी हो सकता है क्या पता नहीं? और बाबा के घर से हमको तो स्वर्ग में जाना है नहीं? मधुबन से स्वर्ग में जाना है। तो आकर के दादी को बता दिया कि मेरे को तो वापस नहीं जाना है, यहाँ ही रहना है। फिर मैंने बाबा को भी बताया कि बाबा मैं वापस न्यूजीलैंड अभी नहीं जाऊंगी, अब तो मैं इंडिया में ही रहूंगी, चाहे कहाँ भी सेवा में रहो, चाहे इंडिया में लौकिक नवसारी है वहां रह करके सेवा करो, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं जाना है। तो फिर बाबा ने बताया कि आप दादी को पूछ लेना नहीं, दादी से बात करना। तो दूसरे दिन दादी से बताया कि दादी मैं तो वापस न्यूजीलैंड नहीं जाऊंगी, अभी भारत में ही सेवा करूंगी। तो दादी ने बहुत समझाया, फिर बोला कि आपको न्यूजीलैंड नहीं जाना है, तो मैं तो खुश हो गई कि मेरे को न्यूजीलैंड वापस नहीं जाना है। तो दादी ने कहा लेकिन आपको सेवा पे जाना है, बाबा आपको सेवा के लिए भेज रहा है, न्यूजीलैंड ही भेज रहा है लेकिन सेवा के लिए भेज रहा है। तो फिर बाबा की बात को, दादी की बात को कौन टाल सकता है नहीं? बाबा हमको सेवा के लिए भेज रहा है। तो फिर हम सेवा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। फिर दूसरा संकल्प आया, अगर मैं सेवा पे जा रही हूँ तो साथ में बच्चे को क्यों ले जाऊं, बच्चे साथ में आएंगे तो सेवा होगी, जितनी करना चाहे इतनी तो नहीं होगी ना, क्लासेस से करा सकते हैं, बाहर घूम घूम के तो नहीं करा सकते। तो फिर मैं वापस 3 महीना रुकती थी ना, तो बीच में नवसारी गई, फिर लौकिक बहन थी, उनको बताया कि बच्चे 4 साल के, दूसरे साल दूसरी ईयर तो है ना, 5 साल के बाद स्कूल जाते हैं। तो मैंने कहा 1 साल पूरा बाकी है स्कूल जाने का, चिन्नी गानन में तो जाते हैं लेकिन वो तो छुड़वा सकते हैं। तो बच्चे को मैं कहा आप मेरे बच्चे को यहाँ संभालेगी, जब मैं दूसरी बारी आऊंगी तब ले जाऊंगी और इस बार को यहाँ छोड़ के जाऊं। तो वो मेरा मुंह देख रही है कि इतने इतने छोटे छोटे बच्चे इतने इतने भोले हैं और उनको छोड़ने का संकल्प आ रहा है। मैं तो उनका संकल्प नहीं पढ़ रही लेकिन वो अंदर एक पढ़ रही। मैंने कहा नहीं आप मुझे बताओ ना कि आप संभालेंगे या नहीं, मैं आपको किराया दे दूंगी, जो आप संभालेंगे सारे बल, तब और कुछ काम आप नहीं करना, आपका खेती का काम होता है वो नहीं करना, उनके में जो आपको लॉस होगी वो मैं आपको दे दूंगी और आप उनको संभालना। तो वो उसने मेरा निश्चय देखा कि मेरे ऊपर कितना भरोसा रख करके वो बता रही है अपने बच्चे को संभालने के लिए ने? तो फिर वो बहुत खुश हुई, वो कहते मुझे संभालने का ही नहीं है और आपके बच्चे हैं तो मेरा बच्चा नहीं है, आप पैसे को बीच में क्यों लाती है ने? आप भगवान की सेवा करने के लिए मेरे को दे रही है तो मेरे को तो बहुत खुशी है, आप खुशी से छोड़ के जा सकती है। तो फिर मैं तो वापस मधुबन आई, फिर बाबा को सीधा बताया कि बाबा मैं इंडिया में बच्चे को छोड़ के जाऊं और साथ में, जब दादी तो रेस में जाती थी ना, मुरली लंबी चलती थी, तो दादी नहीं थी वहां, तो निरीर भाई था बाबा के साथ बैठा हुआ ट्रॉली देने के लिए। तो मैं बाबा को, मेरा टर्न आया, पूछ रही थी बाबा मैं बच्चे को इंडिया में छोड़ के जाऊं, तो निरीर भाई कहता है बाबा छुट्टी नहीं देना, बाबा छुट्टी मत देना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मम्मी चाहिए। भगवान से छुट्टी ले रही हो और आप मना क्यों कर रहे हो, खुद को बोलने दो जो बताना है भगवान। तो फिर बाबा मेरे को भी देखता है, निर्भय भाई को भी देखता है, फिर बाबा ने बोला कि बच्ची समझदार है ने? जो कर रही है ठीक कर रही है, बच्चों को कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत होके जाओ। तो मेरे को तो छुट्टी मिल गई ना छोड़ के जाने की। तो फिर मैंने तो ये मधुबन से तैयारी की जाने की और नवसारी में बच्चे को बहन के पास रखा, फिर मैं वापस न्यूजीलैंड गई। तो जैसे कि हाहाकार हो गया वहां जाके, ये तो सन्यासी बन गई, बच्चे को भी छोड़ के आई नहीं। लेकिन और आधे को ऐसा होता है, आधे को ऐसा होता है कि देखो कुछ न कुछ शक्ति है तब ये ऐसा कर रहे हैं, उनको कोई प्रेर रहा है, नहीं तो ऐसे मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं आती है। एक तो अपना जीवन पवित्र बना रहे हैं, दूसरा बच्चे को छोड़ रहे हैं और ये सेंटर चला रहे हैं, खुद का घर दिया हुआ है, तो लोग हैरान भी होते थे और जो विरोध वाले होते हैं वो मना कर रहे थे कि इनको ही हम बंद कर दे तो पीछे जाने वाले फॉलो करने वाले नहीं जाएंगे, तो लालच देने लगे कि आप ये धर्म को छोड़ दो, ये तो मुस्लिम धर्म है, क्योंकि बाबा कराची का है ना, इसलिए कहते हैं तो मुस्लिम धर्म का है। मैंने कहा मुस्लिम है, हिंदू है, पाकिस्तान है, जो भी है, लेकिन हमारे से तो सिर्फ भगवान ही दिखाई देता है, हम भगवान की सीमत पर चलते हैं, आपको छोड़ देंगे, सारे जहां को छोड़ देंगे लेकिन इस पंथ को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैंने 1 साल वहां बच्चों के बिना दूसरी दूसरी जगह गए, दूसरे शहर में गए ना, फ्राइडे को जाते थे, संडे शाम तक आ जाते थे, मंडे को सर्विस करना है, तो ऐसे बीज डालते रहे जहां। फिर डॉक्टर निर्मला आती थी तो उनको लेकर के, लौकिक कहीं कहीं भारतवासी तो सब जगह सब टाउन में रहते हैं ना, तो उनको कॉन्टेक्ट करके वहां जाते थे और उनके द्वारा ही प्रोग्राम करने का ये बताते थे, प्रवचन दीदी करती थी, हम जाते थे, ऐसे सेवा को वृद्धि को हो रही है। 2-3 साल हो गया तो ज्यादा बन गए, तो मीरा बहन, रजनी बहन वो आते थे लेकिन 3 महीना आते थे, तीन महीना से ज्यादा वीजा तो मिलती नहीं थी, इसलिए हर साल में एक एक आए। फिर मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मुझे टीचर चाहिए। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और सेवाएं बढ़ रही है और इतना टाइम नहीं है। जैसे हम सुबह पहले बताया कि 3 बजे उठते थे, 5 बजे सेंटर पर जाकर के 6 बजे पूरा करके घर आते थे, घर आकर 6 से 8 में रसोई बनाना, शाम के लिए भी बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, फिर स्कूल के आने के बाद क्या खाएंगे वो बनाना, और फिर सर्विस पे जाना और उनको भेजना स्कूल के लिए। तो साथ में ही 8 बजे तो निकल जाना पड़ता है, 8 बजे का सर्विस पे लगने का टाइम है। तो 2 मिनट लेट हो जाते तो कोई बात नहीं, 3 मिनट लेट तीसरे दिन में हुए तो आपको जॉब से आउट। लेकिन बाबा की कमाल थी कि मैं बच्चे को 1 घंटा दूसरे के घर के छोड़ने का था, क्योंकि 9 बजे स्कूल तो खुलती है तो वहां तक क्या करेंगे बाहर में, नहीं तो दूसरे घर के उनको घर छोड़ आती थी कि आप बच्चे को स्कूल भेजना 9 o'clock, उनके बच्चे भी जाते थे। तो 8 बजे निकल करके उनके घर छोड़ करके 2 मिनट बाय ट्रेन में, जैसे कि मैं दौड़ रही हूँ, हर रोज ट्रेन मेरे लिए स्टॉप करता था क्योंकि ट्रेन ऐसे आती है और मैं ऐसे दौड़ती थी तो अंदर से दिखाई देता है ना कि दौड़ के ट्रेन कैच कर रही है। तो हर रोज और वहां जाते जाते 2 मिनट चट जाती थी, लेकिन 3 मिनट हुए तो आउट हुए ना, तो 3 मिनट कभी नहीं हुई, 2 मिनट तो रोज का रोज। बॉस कहता है आप किस दिन राइट टाइम पे आएगी, मैंने कहा वो दिन भी आएगा जो मैं राइट टाइम से पहले आ जाऊंगी तो फिर ऐसे करके उसने भी चला लिया कि मैं अपनी मर्जी से तो लेट नहीं होती हूँ। और इतनी बाबा की सेवा कर रही हूँ, वो भी उनको बताती थी कि मैं ऐसे हम सेवाएं करते हैं और टाइम बहुत ये होता है और बच्चे को स्कूल भेजना है फिर यहाँ आना है, तो ऐसे करके वो भी चलाया। फिर भी बाबा को दूसरे साल आते तो मुझे टीचर चाहिए, तो फिर बाबा ने बोला लंदन वाले की पार्टी थी, कहते हैं कि इनको देखो ये लंदन में सब घरों में क्लास कराते हैं, नहीं तो उनको देख करके आप उनसे सीखो। और लंदन को कहाँ सीखने जाऊं, मैं तो न्यूजीलैंड में हूँ, नहीं तो निर्मला दीदी आई, मैंने कहा दीदी बाबा को बताया कि मुझे टीचर चाहिए, तो बाबा कहते हैं लंदन वाले से सीखो। तो दीदी कहे अच्छा आप लंदन जा, मैंने कहा मैं लंदन कहाँ से जाऊं, तो कहते हैं नहीं बच्चे छोड़ के गई थी ना इंडिया में तो वापस लेने के लिए आना था ना, तो उनसे पहले सीधा मधुबन नहीं जाओ, मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चल। तो दीदी के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया गई, वहां 1 महीना रुकी, फिर वहां से दीदी ने लंदन भेजा, तो लंदन में 2.5 महीना रुकी जानकी दादी के साथ। जानकी दादी बाबा भवन में थी, हम टेनिसन में रुके, तो 2.5 महीना वहां रुके, फिर वहां से दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था तो लंदन से सीधा दिल्ली कॉन्फ्रेंस में गए, फिर कॉन्फ्रेंस से हम मधुबन में आए, मधुबन में बाबा से मिले और लंदन की सब दिनचर्या देख के आए ना, फिर देखे तो पता चले ना कैसे चलने का होता है, तो वो सीखा, फिर उसी एक्यूरेट हम क्लासेस की तरह करने लगे, भोग लगाना ये सब हम सीखे, तो ऐसे जाकर के सेवा की। फिर अगले साल फिर से आई, फिर बाबा को बताया कि मैं लंदन भी होके आई, अभी मुझे टीचर चाहिए तो फिर दादी ने बोला कि बहुत उनको ये है सेवा का और सेंटर की तरह वहाँ सेवा भी जम रही है ना, बहन भी 40-50 के करीब थे तो ये तो अच्छा है। तो फिर दादी ने गुजराती कुमारी को भेजा, तो 3 महीने के रेगुलर वीजा मिलती है, 3 महीने के बाद नहीं, तो फिर हमने 3 महीना भावना बहन का पूरा हुआ तो दूसरा अप्लाई किया, 3 महीना पूरा होने से पहले, तो फिर 3 महीना मिला, तो 6 महीना हुआ, इसमें दिसंबर आ गया, मेरे को भी मधुबन आना है और उनका वीजा भी खत्म हुआ, तो और तो ज्यादा नहीं मिले तो वापस इंडिया आए, वो भी आए हम भी आए, तो हम तो गए, फिर बोला कि उनको ही फिर वापस बुलाए क्योंकि गुजराती है और वहाँ सब गुजराती है, तो गुजराती को गुजराती वाला ही ज्यादा पसंद आए ना, तो उनका ही फिर से वीजा के लिए। तो लौकिक हस्बैंड का जॉब मिनिस्ट्री ऑफ वर्क था, तो उनका पार्लियामेंट में भी जॉब रहता था, तो वहाँ एमपीस भी मुलाकात होती थी और चाबी पार्लियामेंट के साथ में रहती थी, तो जब भी उनको कुछ काम है तो वो जाता था, तो ऑफिस वाले से कांटेक्ट होता था, तब पहचान वाले थे, तो उनको बताया कि देखो हम ऐसे राज्यों का क्लास कर रहे हैं और हमको बहन की जरूरत है, तो आप उनके वीजा पे परमिनेंट का सिक्का लगा दो ना। तो कहते हैं कि हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं, तो आप फिर से उनको बुलाओ, फिर हम एक्सचेंज करेंगे वीजा, ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन परमिनेंट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको हमारी विधि के अनुसार चलना होगा, धीरे धीरे वीजा बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह उनका करके 3 साल तक कंटिन्यू रहे तो परमिनेंट हो सकता है, तो लेकिन आपको आना जाना बुलाना भेजना ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, 3 महीने का मिलता है, 3 महीने के बाद फिर से 3 महीना और 6 महीना भी दे देते है, 9 महीना का भी हो जाता है, मैं दूसरे साल फिर से इंडिया आकर के फिर से लेने का। तो ऐसा किया तो इनका वीजा बाकी था और हम मधुबन आए मिलने बाबा को मिलने के, और वापस न्यूजीलैंड गए, वापस जाकर के 1 महीना ही हुआ और वीजा खत्म हुआ, तो दूसरा अप्लाई किया, तो अप्लाई किया तो जवाब मिला कि आपको कंट्री से बाहर जाकर लेना है। तो पहले तो मालूम नहीं था, तो इंडिया में थे तभी अप्लाई कर देते ना, तो कंट्री से बाहर होता था, तो उनको बताया आपने तो पहले बताया नहीं कंट्री के बाहर जाना पड़ेगा, तो कहता है यही सिस्टम है, कंट्री में रह करके दूसरा वीजा दोबारी का नहीं ले सकते है, कंट्री छोड़ना पड़ेगा, तो अब क्या करें। तो दीदी को बताया कि अब तो वीजा देना तो है, लेकिन वो कहते हैं कंट्री से बाहर जाकर अप्लाई करो तब देंगे, तो अब क्या करें, इंडिया जाए क्या करें। तो दीदी ने बताया पड़ोस में फिजी है, तो फिजी में सेवा नहीं हुई थी, कोई नहीं गया था ब्रह्म कुमार इसका, तो सेवा ही नहीं हुई, तो मेरे को बोला कि आप वो भावना दीदी का टीचर का नाम भावना मैम है, तो उनको लेकर के आप फिजी जा नहीं? और वहां से अप्लाई करना, तो लौकिक हस्बैंड तो करेगा सारा काम, लेकिन हमको तो कंट्री से बाहर निकलना है और ये पहली बार आई है, तो कैसे फिजी में जान पहचान वगैरह क्या करेंगे, किसके कर जाएंगे नहीं? तो मैंने कहा ठीक है, और ये बाबा की कमाल है, बाबा की शक्ति है, तो हम तैयार हुए, और बच्चे 7-8 साल के हैं, 8 साल के हुए नहीं? तो उनको भी मम्मी तो चाहिए ही नहीं? लेकिन क्या बाबा की कमाल है कि हम फिर से छोड़ने के लिए तैयार हुए। तो लौकिक हस्बैंड को बोला कि अगर आप दोनों बच्चों को संभाल लेंगे, उनको ज्यादातर को स्कूल ही राइट टाइम पे भेजना है नहीं, और खाना तो बनाते हैं, तो बना लेंगे और खाएंगे भी। तो फिर मैं भावना बहन को लेकर के जब तक वो वीजा का मले तब तक तो उनके साथ रहना है नहीं, तो हम तो फिजी जाने के लिए तैयारी की बच्चों को छोड़ करके। तो फिजी जब जाने वाले थे, सब उनका भी टिकट आदि प्रबंध सब कुछ कर दिया, और काका मिलिट्री में भी जाता था, तो फिजी में मिलिट्री में गया था, तो उस समय उनका पहचान थी, टेलीफोन नंबर एड्रेस आदि सब कुछ था, तो उनको फोन करके बताया कि ऐसे 2 बहनें फिजी में आ रही है, तो आप उनका रहने का प्रबंध करना, कुछ करना कुछ नहीं है, सिर्फ रहने का पिकअप करना है एयरपोर्ट से, रहने का प्रबंध करना है, और अपने आप सब कुछ करेगी, खाना भी बनाएंगी, खाना लाएंगी भी, सब कुछ करेंगे, आपको कौड़ी का खर्च नहीं होगा, ये सब संभालेंगे, लेकिन जैसे आए उस समय आपको संभालना। तो वो भी खुश हो गए, धार्मिक वो प्रवचन करेंगे, तो ऐसा हो सके तो उनका वो प्रबंध करना, जहां भी आपको प्रोग्राम रखना है रख सकते हैं। तो ऐसे करके जैसे कि आज निकलने कल निकलने वाले हैं, और वहाँ समाचार मिला कि अपनी दीदी ने शरीर छोड़ाया व्यक्त हुए ने? तो अब क्या करे, जावे या नहीं जावे ने? फिर से दीदी को फोन लगाया कि दीदी ऐसा समाचार मिला तो हम क्या करें, फिजी जावे या सेंटर पे ही कुछ प्रोग्राम मनाना है? तो दीदी ने कहा नहीं, आप लोग दोनों जाओ फिजी, क्योंकि वो पोस्टपोन करने का ये नहीं है, नहीं वीजा का काम है, खत्म हो जाए तो फिर ना उधर का न इधर का हो जाता। तो कहते हैं कि आप फिजी जाओ, तो हम फिजी गए। फिर जहाँ हम हफ्ते हफ्ते अलग अलग जगह रुके, नहीं क्योंकि जिस रात को गए फिर दूसरे दिन तो अपने आप जैसे पहचान वाला जगह ही हो जाती है ना, टाउन है उसमें जाते हैं तो गुजराती है, हिंदी है, जो भी मिले बात करना होता है। तो हम बाजार में गए, अलग अलग दुकानों में बाबा का परिचय भी देते गए पैम्फलेट, और उनको बताया कि हम इस जगह पर रहे, आपको आना अगर ये है तो, हम राजयोग सिखाते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं। तो उसने बोला कि आप कहाँ रहते हो, तो उनको एड्रेस बताया कि हम इस जगह पर रहते हैं। तो वो दुकान वाले ने खुद ही ऑफर किया कि आप हमारे घर आओ, हम आपको रिसीव करेंगे, और साधु सन्यासी जो भी आते हैं ना भारत से, वो हमारे अलग सा मकान से है, जैसे फ्लैट का अंदर किचन कमरा सब कुछ है, अलग सा ही है, उसमें कोई नहीं रहता, सिर्फ सन्यासी लोग के धार्मिक लोग जो आते हैं वही रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता है, तो आप वहां आकर के रहो। तो फिर हम तो वहां शिफ्ट हो गए, तो वहां से फिर हम मंदिर में जाना शुरू हुआ। तो जैसे यहाँ सेवा कर रहे हैं वही लोग दूसरे अपने टाउन वाले को बता देते हैं कि भारत से दो बहनें आई है और सब सब सुनाती है, रामायण भी सुनाती, महाभारत भी सुनाती, गीता भी सुनाती, आप जो पूछो सब सुनाती है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आप भी। तो हम ऐसे ऐसे हमको आगे से ही निमंत्रण मिलते गए, छह हफ्ते में छह जगह गए और पहले से निकले दूसरी जगह, तो यहाँ जिसको सुनाया ना हमारी तरह उसने भी चालू ही रखा, बाबा का पाठशाला के रूप में एक को निमित्त बना देते थे आपको ये। तो जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ से निकलते गए ब्राह्मण और जिम्मेवारी लेते गए गैदरिंग होकर के क्लास करने की। तो फिर चार हफ्ता हो गया और निर्विभय आने वाला था वहाँ, फिर तो फिर मैं तो चार हफ्ते में वापस फिजी आ गई, फिजी से न्यूजीलैंड आ गई, और भावना बहन को वहाँ दूसरे परिवार में छोड़ा। तो उसने ये बोला कि तब तक वीजा भी नहीं मिला था, तो जब वीजा मिले तब वो तो आएगी ना। तो दो हफ्ते के बाद उनका वीजा का भी प्रूव हो गया, मिल गया, इसलिए दो हफ्ता मेरे पीछे न्यूजीलैंड भावना बहन आई, तो और लंबा वीजा हो गया। फिर इसी तरह फिर से रिन्यू कराया, फिर से मिला, उसके बाद तीन साल भी हो गया और उनका परमानेंट भी हो गया। तो ऐसे सेवा, जब हम फिजी से वापस आ गए, लेकिन हम जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ क्लास चालू रखा, तो हम पोस्टपोन उसको मुरली भेजते रहे नहीं? फिर तो भावना बहन का परमानेंट हो गया, इसलिए हर साल वो फिजी भी जाती रही, और वहाँ भी बहुत जोर शोर से सेवा चल रही है, और न्यूजीलैंड में भी सेवा बहुत बढ़ रही। तो हम वहाँ तो मकान में कमरा होता है ना, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, तो ज्यादा ब्राह्मण होने लगे तो कमरे की दीवार निकाल दी नहीं? तो 100 के हिसाब से इकट्ठे बैठ सके, तो इतना बड़ा किया। फिर उनसे भी कम होने लगा तो दूसरा दो रूम का बड़ा हॉल जैसा पीछे के भाग में बनाया नहीं? फिर तो बाबा के ऑफिस का कमरा, सोने का बेडरूम एक कमरा, फिर सिटिंग रूम ने, फिर कोर्स कराने का रूम, क्लासरूम, कितना अलग अलग बढ़ता गया ने? तो ऐसा करके भी करते करते भी छोटा हुआ। तो फिर हाँ, उसके बाद हमने बाबा के मकान के बाजू में ही दूसरा मकान बेच रहा था, तो वो भी हमने ले लिया कि भविष्य में अगर उनको और बड़ा बनाना है तो सहज हो जाएगा। फिर हम उसमें रहने गए, तो उसके बाद फिर यही समय आया कि तोड़ फोड़ करके बड़ा नहीं करना, अब बाबा का लिए एक नया मकान ही ले लेते हैं, क्योंकि संख्या बहुत हो गई, फिर तो सब मिल करके करेंगे ना। फिर दीदी ने बताया आप लोगों ने तो बहुत सेवा की, अब और दूसरे को दो सेवा का चांस, सब मिलकर के बाबा का मकान लेंगे। तो दूसरा शहर में थोड़ा दूर, बहुत दूर नहीं है, लेकिन वहाँ नया सेंटर और लिया। फिर भावना बेन वहाँ शिफ्ट हो गई और हम बाजू के मकान में थे, उसमें से सेंटर वाले मकान में आ गए। पहले मैं भावना बेन के साथ सोने के लिए जाती थी, रात को सोने के लिए जाती थी, फिर सुबह में क्लास करके वापिस आती थी, और तब तक बच्चे उनके डैडी के साथ घर में रहते थे। और ऐसे ऐसे करके सेवा को वृत्ति के पाया और सबको पक्का करते पक्के पक्के ब्राह्मण। तो हमने जो सेवा की ना, वो शुरू से ही कच्चे कच्चे ब्राह्मण नहीं निकाले, नहीं चलेंगे आएंगे जाएंगे ऐसा नहीं। जैसे क्या करते हैं मुंडी, इसमें मुंडी डाली तो फिर निकालनी नहीं है, नहीं? तो उनको पहले से ही कोर्स में, सेवन डे कोर्स में ही सिखाते हैं। ये कहीं मासी का घर नहीं है, सोच समझ करके चलना है। फिर आप जो भी कुछ सफल करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम इसको दिया है, ये यज्ञ भगवान का नाम का है, किसी का लेबल नहीं है कि इतने का इसका ए है इतने का ए है। दाएं हाथ से आप दो, बाएं हाथ को मालूम नहीं चलता है, नहीं? तो इसी तरह यज्ञ को चलाना होता है, नहीं? तो यज्ञ में कौन है, ब्राह्मण रक्षक है, तो पक्का पक्का ब्राह्मण बन करके आना है और चलना है। और सफाई सुथरे वाला काम पहले से ही बता देते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो अंदर चलो। देखने के लिए सत्संग नहीं है कि यहाँ क्या सुनाते हैं क्या करते हैं हम देखने को जाए, तो ये देखने वाला सत्संग नहीं है। देखने वाला देखना है तो मंदिर में जाओ, वहाँ एक घंटा जो भी आते हैं, किसने क्या पहना है किसने क्या खाया है वो देख के जाओ, देख कर। लेकिन ये भगवान का सत्संग है, उसमें फॉलो करना होता है, जो भगवान सुनाता है उनको फॉलो करना होता है, जीवन में धारण करना होता है, धारण करके फिर हम अंदर चल सकते हैं। इसलिए सबको मालूम होता है कि यहाँ जाएंगे तो ऐसे ही नहीं, तो कलरिंग कपड़े पहन के नहीं आते हैं, कोर्स में आते हैं ना तो अभी व्हाइट कपड़े ही पहन के आएंगे, नहीं? ये क्लास का यूनिफॉर्म है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे तो आपको यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म पढ़ करके स्टूडेंट बन के जाना होता है, नहीं? तो ऐसे व्हाइट वहाँ यूनिफॉर्म, तो कोर्स वाले भी व्हाइट पहन के आएंगे। तो ऐसे करके इतने साल हो गए सेवा वृत्ति को हो रही। फिर वहाँ के अंग्रेज इनको क्लास कराते थे, नहीं? तो दूसरे किराए मकान थे तो उसमें अंग्रेज लोग रहते थे, तो उनको किराया लेने जाते थे, बाबा के बात करते थे, नहीं? फिर कहते आप भी राजयोग मेडिटेशन सीखो, आकर के सेवन डेज कोर्स होता है, अपॉइंटमेंट्स लेकर के क्लास करनी होती है। तो ऐसा सिखाते, अंदर से ही ब्राह्मण, वही पक्के ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार रह गए, नहीं? तो दो साल के बाद फिर उनको मधुबन में लाते थे, तो मधुबन आते थे तो यहाँ तक ठप्पा लग जाता है, बाबा का प्यार दादी का प्यार यहाँ की सब देख करके वहाँ वापस जा करके वो अपने आप पक्के पक्के ब्राह्मण। नहीं, दूसरे साल किराते हैं, फिर दादी कहते हैं कि एक जगह क्यों रहो, आप लोगों तक कुमार है कुमारी है, नहीं वो तो फ्लैट में रहते है, नहीं? तो कहते हैं दूसरे शहर में जाकर के फ्लैट में रहो और आप खुद ही सेवा करो, खुश कराओ, जो आपने सिखा वो आप दूसरे को सिखाओ। तो इसी तरह वहाँ दूसरे शहरों में सेंटर खोला। फिर तो डॉक्टर निर्मला दीदी आती गई, हमको डायरेक्शन देती गई, बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।